दो मई दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। संयुक्त राष्ट्र अदालत ने हत्या का आरोप झेल रहे इटली के नौ सैनिकों को वापस इटली भेजने के आदेश दिए।
मुझे लगता है कि इसको देखना उस संदर्भ में चाहिए कि ये एक अच्छा मौका है जिसके थ्रू भारत और यूरोप के और भारत और इटली के संबंधों को फिर से ठीक से सुधारा जा सकता है।
भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक का देहावसान।
प्रतिभा के अगर दृष्टिकोण से देखें तो प्रोफेसर बलराज मधोक की जैसी प्रतिभा भारतीय राजनीति में आपको नहीं मिलेगी।
होंगे आपके पत्रों के जवाब और खेल समाचार भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। इटली के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक ट्रिब्यूनल ने भारत में पकड़े गए एक नौसैनिक को मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने तक इटली भेजने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत ने कहा है कि किसी इतालवी नौसैनिक को छोड़ने का आदेश नहीं दिया गया है और उनकी जमानत की शर्तें भारत की सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। 2012 में दो इतालवी मरीन्स पर केरल के तट के पास दो भारतीय मछुआरों पर गोली चलाने और उनकी हत्या कर देने का आरोप लगा था। इनमें से एक इतालवी मरीन को पहले ही स्वास्थ्य कारणों से इटली भेज दिया गया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने में सरकारी अमला अभी भी लगा हुआ है। इस आग में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का कहना है कि आग को बुझाने के लिए करीब 6,000 लोगों को लगाया गया है। 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। माना जा रहा है कि इन लोगों ने निर्माण कार्य के लिए आग लगाई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि जिनेवा में सीरिया के युद्ध विराम को दोबारा लागू करने के लिए बातचीत सफल होती दिख रही है, लेकिन अब भी इस दिशा में काम बाकी है। जॉन कैरी से मुलाकात के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदेल अल जुबैर ने अलेप्पो की स्थिति को दुखद बताया और इसके लिए राष्ट्रपति बशर अल असद को जिम्मेदार ठहराया। अलेप्पो में पिछले हफ्ते भारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अलेप्पो में पिछले हफ्ते एक अस्पताल पर हमला हुआ था। अस्पताल के डॉक्टर हमजा अल खातीब ने कि सीरिया के लोग बातचीत से तंग आ चुके हैं।
For 2 months, the Russian Air Force struck Aleppo very heavily, and no one did anything about it.
2 महीने तक रूस ने अलेप्पो पर भारी हवाई हमले किए और किसी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। 2 अस्पताल सरकारी सेना के हमलों की वजह से बंद हो गए। 2 स्वास्थ्य केंद्र भी तबाह हो गए। हम सिर्फ अच्छे भाषण सुनते हैं, सिर्फ भाषण। पिछले 5 साल से हम बस यही सुन रहे हैं। ये थे डॉक्टर हमजा अल खातीब के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में पुलिस ने एक सिख की पगड़ी उतारने के मामले में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के 6 लोगों के खिलाफ ईश निंदा का मामला दर्ज किया है। महिंदर पाल सिंह नाम के सिख शख्स का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक कर्मचारी ने उनकी पगड़ी छीनकर जमीन पर फेंक दी। महिंदर पाल सिंह के मुताबिक ये सब तब हुआ जब उन्होंने और कुछ यात्रियों ने सफर में देरी की शिकायत ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों से की। उन्होंने कहा कि पगड़ी सिख धर्म में पवित्र चिन्ह मानी जाती है और उसे नीचे फेंकना इसका अपमान है। इराक की राजधानी बगदाद में एक कार बम धमाके में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा और स्वास्थ्य सूत्रों का कहना है कि 28 लोग घायल भी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। इटली के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता न्यायालय ने भारत में पकड़े गए इतालवी नौसैनिकों को मुकदमे की कार्रवाई पूरी होने तक इटली वापस भेजने का आदेश दिया है। 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में 2 इतालवी नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक नौसैनिक को 2014 में स्वास्थ्य कारणों की वजह से पहले ही इटली भेज दिया गया, लेकिन दूसरे को भेजने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इन दोनों नौसैनिकों के खिलाफ मामले के गुण दोष की समीक्षा जारी रखेगा। अमर शर्मा की रिपोर्ट।
मैसिमिलियानो लाटोर और सल्वाटोर गिरोन नाम के 2 इतालवी नौसैनिकों को साल 2012 में 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि नौसैनिकों का कहना है कि फरवरी 2012 में केरल के तट के नजदीक उन्होंने दो भारतीय मछुआरों बैलेंटीन और अजेश बिंकी को समुद्री डाकू समझकर गोली चलाई थी। ये इतालवी नौसैनिक एक समुद्री तेल टैंकर एनारिका लेक्सी की पहरेदारी कर रहे थे। इस मामले में एक नौसैनिक लाटोर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से साल 2012 में ही इटली लौट चुका है, जबकि भारत सरकार ने दूसरे नौसैनिक सल्वाटोर गिरोन के देश छोड़ने पर रोक लगा रखी है। वह अभी दिल्ली स्थित इतालवी दूतावास में रह रहा है। इस मामले को लेकर इटली और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। इटली का कहना है कि चूंकि घटना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर हुई थी, इसलिए भारत को इन नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने का कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि पिछले साल दोनों देशों ने मामले को हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ले जाने और उसका फैसला मानने पर सहमति जताई थी। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के आदेश के बाद अब इतालवी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सल्वाटोर गिरोन की इटली वापसी का फैसला भारत और इटली के बीच बातचीत के बाद लिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि गिरोन की जल्द से जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए वह भारत से तत्काल संपर्क करेंगे। भारत में साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद भारत और इटली के बीच संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है, ये सवाल मैंने JNU में यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेव से पूछा तो उनका जवाब था,
नहीं देखिए, चुनाव से पहले बहुत सी बातें होती है, बहुत सी चीजों का राजनीतिकरण होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये मुद्दा इसलिए ही ज्यादा बिगड़ा है क्योंकि भारत और इटली दोनों देश में इसका बहुत ज्यादा राजनीतिकरण पहले ही हो चुका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत अगर कहती है तो भारत के लिए ये एक अच्छा फेस सेविंग भी है, क्योंकि उसके लिए आप ज्यादा इतना बड़ा मुद्दा उसको बना लिया है जो, और इलेक्शन के टाइम वो बन चुका था, लेकिन अब जो सरकार में है तो वो भी चाहेंगे कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे बने और यूरोप के अंदर भी, क्योंकि अगर वो उसकी हमारे जो संबंधों के ऊपर पड़ रही है।
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है कि वो इन दोनों नौसैनिकों के खिलाफ मामले के गुणदोष की समीक्षा जारी रखेगा।
इटालवी नौसैनिकों को वापस इटली भेजने के आदेश।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब कुछ खबरें भारत से। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। प्रशासन का दावा है कि 70% से ज्यादा हिस्से में आग बुझा दी गई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों की माने तो कई जगह पर आग बनी हुई है। इस बीच उत्तराखंड से सटे हिमाचल प्रदेश में भी जंगल की आग एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेती हुई फैल रही है। यही स्थिति जम्मू कश्मीर की भी है। उत्तराखंड में आग की अब तक 1600 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 2800 हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुका है। प्रभावित इलाकों में कुछ जगहों पर आंशिक रूप से आसमान पर बादल छाए हुए थे, लेकिन हवा की वजह से आग धधकती रही। हालांकि धुएं की मोटी परत से वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की उड़ानों में दिक्कतें आईं और निर्धारित उड़ानें नहीं हो सकी। आग बुझाने का प्रमुख दारोमदार ग्राउंड फोर्स पर ही रहा, जिनमें वन कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों और सेना के जवान भी शामिल हैं। NDRF की 3 टुकड़ियां भी मौके पर तैनात हैं। पूरी रिपोर्ट के साथ शिव जोशी।
पिछले एक सप्ताह से उत्तराखंड में धू धू कर जलते जंगलों ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। सेना के इतिहास में पहली बार जंगल की आग बुझाने के काम में उसे उतारा गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर पानी के छिड़काव के लिए पहुंचे। 6000 से ज्यादा बचाव कर्मी जंगल की आग बुझाने के काम में लगाए गए। इस आग ने उत्तराखंड में 2200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगलों को बर्बाद कर दिया है। बड़े पैमाने पर जैव विविधता नष्ट हो गई है। राज्य के 12 वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के जीव जंतुओं की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां इस आग में नष्ट हो गई हैं। यही नहीं, उत्तराखंड के गांवों का जीवन और पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। न सिर्फ गर्मी बढ़ गई है, धुएं से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं और पीने के पानी के स्रोत सूख गए हैं। सुनिए टिहरी जिले के कोट गांव की रजनी जुयाल की ये व्यथा।
से तो काफी फर्क पड़ रहा है। जो पशुओं के लिए चारा होता था वो पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। खेतियों में दिक्कत हो रही है और प्रदूषण में काफी वो मतलब दिक्कतें हो रही है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पानी की परेशानी हो रही है, सारे स्रोत सूखे हैं और गाय भैंसों के लिए दिक्कत हो रही है, पानी की दिक्कत हो रही है। कहीं पानी नहीं मिल रहा है, दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है और जो पानी के स्रोत थे वो सब सूख गए हैं।
रजनी से मिलती जुलती दास्तान टिहरी के चंबा कस्बे के पास एक गांव के सूर्यमणि की है, जिनका कहना है कि इस आग ने तो जैसे जीवन ही बदल डाला है।
का प्रभाव यह है, हम लोगों को बहुत दिक्कत है, सांस में दिक्कत है, गाय भैंस के लिए कोई पत्ती चारा नहीं है, पानी नहीं है कहीं, दूसरों में हम खेतों में काम करते हैं, इतने नाना प्रकार की बातें हैं भाई जो कि हमको इस जंगलों से आग लगने से बहुत परेशानी है। बस
आग की ऐसी घटनाएं उत्तराखंड के पिछले 5 साल के इतिहास में नहीं हुई हैं। पिछले एक सप्ताह में पूरे राज्य में आग की 200 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं और ये अपने आप में चौंकाने और चिंतित करने वाला आंकड़ा है। जंगल की आग के पुराने दिनों को याद कर रहे हैं ग्रामीण शिक्षक लोकेश कुमार।
ये जंगलों में जो आग है, ये हम बचपन से जंगलों के पास में रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। हमारे समय में जो जंगलों में आग लगती थी वो कभी 2-3 साल बाद, 2-3 साल में एक बार कहीं आग लग जाती थी। गांव के लोग बड़े एकजुट होकर के हरे पेड़ों की टहनियों को तोड़ तोड़ करके और उन आग को बुझाया करते थे, सारे लोग जंगलों को बचाते थे। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है ये 2-3 सालों से जो हमने एक ट्रेंड देखा है, आग इतना विकराल रूप ले लेती है, इसमें ऐसा नहीं लगता है कि किसी असावधानी बस लगी है, ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ करके ऐसा किया है।
इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंड में अगले कुछ रोज उम्मीद बनकर आ सकते हैं, क्योंकि उस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आने वाले 48 घंटों के पूर्वानुमान के बारे में देहरादून मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया।
जो है 3 तारीख से आगे पश्चिमी विक्षोभ का असर आना शुरू हो जाएगा और उसके चलते 2 से 3 दिन आगे जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है अनेक स्थानों पर आपको मिलेगी। तो यही है, 3 तारीख से शुरू होगा और कल शाम या रात से शुरू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा सिस्टम जो है। तो उसकी वजह से हमारे को करीब करीब 3, 4, 5 को जो है अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश मिलने की उम्मीद है और इसके साथ 6 तारीख को भी जो है कुछ जगहों पे थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा और तो उस दिन भी हल्की बारिश मिलने की उम्मीद है।
उत्तराखंड की इस आग से सबसे ज्यादा गढ़वाल मंडल के पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी जिले प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि 9 मई को केदारनाथ के और 11 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में एक चुनौती यात्रा मार्गों की सुरक्षा की भी है। सबसे ज्यादा आग यात्रा मार्गों के जंगलों में ही देखी जा रही है। इसी तरह कुमाऊं में सबसे ज्यादा प्रभावित जंगल नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों के हैं। इन जंगलों में कुछ हद तक आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन रात होते होते और हवा का दबाव बनते ही आग फिर सुलगने लगती है। हालांकि वन कर्मियों की 24 घंटे तैनाती प्रभावित इलाकों में की गई है, लेकिन ऊंचे, कठिन, नुकीले और फिसलन भरे पहाड़ों में हर जगह पहुंचकर आग बुझाना एक कठिन चुनौती बनी हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सैटेलाइट चित्रों से पता चलता है कि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक जंगल की आग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
इस बीच उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने बताया है कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाते हुए पाए जाने के कुल 46 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एक मामले में FIR और 45 में फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक का आज निधन हो गया। 96 वर्षीय मधोक कुछ समय से बीमार चल रहे थे और 1 महीने से एम्स में भर्ती थे। बलराज मधोक 1962 और 1967 में दिल्ली का संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के स्कार्दू इलाके में 25 फरवरी 1920 को जन्मे मधोक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सचिव भी थे। उनके राजनीतिक जीवन पर नजर डाल रहे हैं सलमान रवि।
दुर्भाग्य ये हुआ कि उस समय हमने पार्टीशन स्वीकार कर ली, मगर उसकी लॉजिकल क्रॉलिज को स्वीकार नहीं किया। पार्टीशन ने 2 बातें स्पष्ट कर दी।
अपने तल्ख तेवरों के लिए जाने जाने वाले बलराज मधोक पिछले कई दशकों से राजनीतिक हाशिए पर रह रहे थे।
बेसिकली गलत थी। हर मुल्क का कल्चर कंपोजिट होता है, मगर कोई अपने कल्चर को कंपोजिट नहीं कहता। दुनिया में सबसे अधिक कंपोजिट कल्चर आज अमेरिका का है। No American will ever say it is composite. उसे अमेरिकन का।
मगर वो हमेशा ऐसे नहीं थे। एक ऐसा दौर था जब उनका राजनीतिक कद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से भी ऊपर था, मगर अपने तेवरों की वजह से 1973 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था।
ये गंगा जमने की बात गलत है। जब जमुना गंगा में मिल जाती है तो कोई गंगा के पानी को गंगा जमनी पानी नहीं कहता, उसे गंगा जल।
1920 में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के बल्टिस्तान में जन्मे 96 वर्षीय बलराज मधोक का बचपन मौजूदा पाकिस्तान के गुजरनवाला में बीता, मगर विभाजन के बाद वो जम्मू आ गए। 1966-67 में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ का गठन किया था और वो उसके अध्यक्ष भी रहे थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें आखिरकार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? यही सवाल पूछा मैंने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राम बहादुर राय से।
प्रतिभा के अगर दृष्टिकोण से देखें तो प्रोफेसर बलराज मधोक की जैसी प्रतिभा भारतीय राजनीति में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन केवल प्रतिभा के कारण आप शिखर पर बने नहीं रह सकते जब तक कि आप अपने साथियों को साथ लेकर न चल सके, और ये क्षमता उनमें नहीं थी। अभी मैं कल परसों ही कुछ पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि आरएसएस के जो सरसंग चालक थे बाला साहब देवरस, उनके बारे में तमाम उन्होंने कुछ लिखा है, बोला है।
बलराज मधोक अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के कड़े आलोचक भी रहे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उनके राजनीतिक हाशिए पर चले जाने का ये भी एक कारण रहा कि वो अपने सहयोगियों की भी खुलकर आलोचना किया करते थे। वरिष्ठ पत्रकार किंचुक नाग कहते हैं,
उस टाइम में पार्टी का गठन हो रहा था बड़ी वाली, तब भारतीय जनसंघ तो बहुत छोटी पार्टी थी, बढ़ रही थी, तो उनके अंदर कुछ लॉबीज थे। एक लॉबी थी जिसमें वाजपेयी थे, उनके असिस्टेंट थे आडवाणी, ये वाली लॉबी अभी हो गए, और नानाजी देशमुख थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह को। उनका इनफैक्ट शायद मधोक ने ये भी कहा था कि उनको नानाजी देशमुख ने कहा था कि इस टाइम में जरूरत है कि जो हिंदी भाषी आदमी हो, जो हिंदी हार्डलैंड से है, वैसे आदमी को हम चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने भारतीय जनसंघ के, तो आप साइड में हो जाइए आप थोड़ा। तो ये मतलब यही कहना, बेसिकली वो तो पंजाबी थे, ही वॉज फ्रॉम जम्मू, रिफ्यूजी थे। तो यही लॉबी एक थी बिटवीन यूपी लॉबी और हिंदी लॉबी वर्सेस पंजाबी लॉबी की जो फाइट थी, वो भी एक रूप से देखा जाए तो वो भी थी।
बलराज मधोक लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था, जहां उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बलराज मधोक की विचारधारात्मक प्रतिबद्धता मजबूत और उनके विचार सुलझे हुए थे। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। सोशल मीडिया में एक तस्वीर की बहुत चर्चा है। इस तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू, विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का पांव छूते दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले से जुड़े आरोप लग चुके हैं और ऐसे में उच्च विचारों की बात करने वाले कन्हैया कुमार की इस ताजा तस्वीर ने उनके विरोधियों को बोलने का अवसर दे दिया है। विनीत खरे की रिपोर्ट।
जेएनयू छात्र संघ प्रमुख कन्हैया कुमार के समर्थकों ने उनके लालू प्रसाद यादव का पांव छूने का बचाव किया है। इस बारे में कन्हैया कुमार से बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके मीडिया प्रतिनिधि जयंत ने कहा,
जो लोग भी न्यूनतम राजनीतिक शालीनता और लोक व्यवहार और बिहार की लोक संस्कृति से वाकिफ हैं, वो इस तस्वीर का कोई जबरन निहितार्थ नहीं निकाल सकते। इसके पूर्व भी कन्हैया जिस जो लोग भी जो भी सियासतदान जिस भी विचारधारा के हों, जेएनयू के पक्ष में और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में खड़े हुए, उनसे एक एक कर वो मुलाकात कर रहे हैं और उनके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। ये एक कश्ती कॉल था, शिष्टाचार भेंट थी, उसमें एक सम्मान का भाव था बस, उसमें और कुछ कोई अलग से कुछ मीनिंग निकालने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जयंत का कहना था,
लालू प्रसाद के विवादास्पद उनकी छवि को लेकर जो बात है, ये बहुत स्पष्ट है कि देश में बहुत सारे घोटाले हुए, लेकिन बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया था वो लालू प्रसाद थे। उनकी राजनीति की अपनी जो विशिष्ट धारा है या उनके कार्यकाल में जो विसंगतियां हुई उसके प्रति मेरी अपनी हमारी अपनी आलोचना है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जिस मुस्तैदी से लालू प्रसाद खड़े रहे बिहार में उसका अपना एक महत्व है।
सोशल मीडिया में कन्हैया कुमार और लालू यादव की इस तस्वीर की कड़ी आलोचना की जा रही है। खुद को डम्ब हीरो कहने वाले एक व्यक्ति ने ट्विटर पर लिखा है, आप खुद को अंबेडकरवादी कैसे कह सकते हैं? अंशुल सक्सेना लिखते हैं, क्या ये वही व्यक्ति है जो आजादी, भ्रष्टाचार, भारतीय सेना आदि के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था? क्या उनके पास चारा घोटाले पर बात करने की हिम्मत है? पत्रकार धन्या राजेंद्रन लिखती हैं कि अगर ये तस्वीर सही है तो कन्हैया कुमार कैसे एक नई उम्मीद है। सीपीआई के एक वरिष्ठ नेता ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया, लेकिन उनकी आवाज से लगा कि वो खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, इन बच्चों के पीछे कौन लगेगा? याद रहे कि जेएनयू के एक पूर्व नेता चंद्रशेखर आजाद की हत्या मामले में आरजेडी के एक पूर्व सांसद पर आरोप भी लगे थे। जयंत ने कहा कि कन्हैया ये यात्राएं भूखे ही कर रहे हैं और वो 9 फरवरी के विवादास्पद मामले में जेएनयू प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ जारी अनशन का हिस्सा हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो कार्यक्रम आप शॉर्टवेव 16, 19, 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 7255, 11995, 11700, 7565, 7600 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज की विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।
आज सोमवार है और आज के दिन आप सुनते हैं अपने पत्रों के उत्तर। आपके पत्रों के साथ हैं मोहनलाल शर्मा और राजेश जोशी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ
पत्र पढ़ने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ मोहनलाल शर्मा।
मोहनलाल शर्मा, आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे दोस्तों कि आज मोहनलाल शर्मा की आवाज़ चिट्ठियों में सुनाई पड़ेगी, लेकिन ये है और मोहनलाल के पास बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं, ईमेल हैं। कहाँ से शुरुआत करना चाहते?
शुरुआत कर रहे हैं, एक नौवीं क्लास की एक लड़की है, अल्मोड़ा की है, वांग्मी जोशी इनका नाम है, और जो हमारी नई पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व करती है, नाइन्थ क्लास में पढ़ती हैं। ये कहती है, मैं बचपन से बीबीसी सुनती आ रही हूँ और बीबीसी को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं लंबी चिट्ठी नहीं लिखूंगी, पर मेरी इस कविता को कार्यक्रम में जरूर शामिल कीजिए।
इन्होंने कविता भेजी है।
कविता लिखी है और ये लिखती है कि जो है यहाँ वो न कहीं मिल पाएगा, टीवी पे देखोगे तो वक्त ही बस जाएगा, विश्वास है खुद से अधिक, तुम विस्तार हो हम हैं पथिक, डायरी तो इतनी अच्छी खुद की भी नहीं लगती है।
क्या बात है।
बीबीसी पर हो अगर तो खबर वो बिल्कुल सही है। ये जिक्र कर रही है ब्रजेश उपाध्याय और वसल साहब की डायरी का। विवेचना का अर्थ तो मालूम मुझको है नहीं, पर रेहान जी सुनते हैं इस जग की बातें अनकहीं। सुनती रही हूं बचपन से, मैं तो आज भी बच्ची हूं, बीबीसी जानती हो मैं तुम्हारी प्रशंसक
सच्ची हूं। अरे वाह, क्या बात है।
आगे कहती हैं कि वादा है मेरा, मैं सुनूंगी तुम्हें हमेशा, आशा है कि ये साथ हमारा बना रहे सदा ऐसा ही।
कितना सुंदर नाम है वाग्मी जोशी और कितनी सुंदर कविता वाग्मी तुमने लिखी है। हमारे कार्यक्रम लगातार सुनती रहना और हमें चिट्ठियां भी लिखती रहना। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी लिखावट और हिंदी बहुत शुद्ध लिखी है, इसकी बड़ी खुशी है मुझे।
और कविता तो वाकई बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं एक चिट्ठी लेना चाहूँगा, ये भी एक मेल है। विशाखापत्तनम से रजनीश तिवारी ने इंडिया बोल कार्यक्रम के बारे में अपनी राय भेजी और कहते हैं कि कार्यक्रम के दौरान फ़ोन लगाना बहुत मुश्किल होता है और मुझे ये कहना है कि जहाँ गरीब आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए बूंद बूंद को तरसता है, वहीं अमीर लोग बोतल बंद पानी पीते हैं, आईपीएल का आनंद लेते हैं।
जी, इस बार इंडिया पोल में पानी की जो किल्लत है वही विषय था, उस पर हमें अफसोस है कि बहुत सारे हमारे श्रोता कोशिश करते हैं कार्यक्रम में शामिल होने की लेकिन टेलीफोन नहीं लग पाता है। अगर आप वाकई हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना फ़ोन नंबर हमें भेज दें, अगर संभव हुआ तो हम आपको आप ही के फ़ोन पे संपर्क करेंगे अगली बार से और आपकी राय को शामिल करेंगे इंडिया बोल में।
छत्तीसगढ़ से नितेश पंत लिखते हैं कि मेल्विन डिमेलो पर रेहान फजल की विवेचना बहुत पसंद आई और रेहान फजल साहब तक तारीफ पहुंचा दी जाए।
ये तारीफ तो समझिए कि साहब पहुंच गई है और जो इस बार इस शुक्रवार को डिमेलो साहब पे विवेचना हुई थी उसकी तारीफ इतनी जगहों से हो रही है। बहुत सारे लोग इस तरह के कार्यक्रम करते नहीं हैं, सुनने में नहीं आता है। भारतीय जो टेलीविज़न मीडियम है या अखबार, उसमें ऐसी चीज़ें आम तौर पर सुनने को नहीं मिलती या पढ़ने को नहीं मिलती।
और खासकर ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो कौन थे और कैसे थे और
तो
करते क्या।
रेहान साहब, ये ख़जाना तो उनके पास है और आपके पास वो पहुँचाते रहते हैं।
महेश चंद्र शर्मा है, दयानतपुर जीबी नगर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं और कहते हैं कि भाई 1971 के युद्ध के समय से ये लगातार बीबीसी सुन रहे हैं।
यानी भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था तब से बीबीसी सुन रहे हैं। जमाना बदल गया था,
जमाना
तब से बीबीसी ही एकमात्र एक तरह से माध्यम था। अब तो तमाम टेलीविजन चैनल्स हैं, अखबार हैं और बीबीसी लेकिन अपनी जगह पे है।
लेकिन आगे आगे ये लिखते हैं कि भाई कभी कभी लगता है कि आप बह जाते हैं, आप भी भावनाओं में बह जाते हैं।
अच्छा, क्या
इस तरह की, ये कह रहे हैं कि इंडिया बोल सुना, स्मार्ट सिटी, काफी पुराने कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं कि भाई मोदी साहब की जो स्मार्ट सिटी अचानक कहां से आ गई और कई कई मसलों पर आप जो है थोड़ा सा भटक जाते हैं।
पोस्टकार्ड लिखा है और लिखते हैं कि जब चुनाव हो रहे थे उसमें सिर्फ मोदी जी का बोलबाला था। साहब जो आप ये बात कह रहे हैं, महेश चंद्र शर्मा जी दयानतपुर जीबी नगर यूपी से, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को तो ये शिकायत है कि हमने जो चुनाव की हमारी कवरेज जो था उसमें मोदी जी के बारे में तो थी ही नहीं बात। अब आप कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ मोदी का बोलबाला था, तो इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। ये तो हम कह ही सकते हैं क्योंकि उसमें आलोचना भी हमको मिलती है और तारीफ भी होती है।
मदन मिश्र का ये एक पोस्ट कार्ड है,
धुले महाराष्ट्र से।
बिल्कुल बिल्कुल,
मैं सही, पोस्ट कार्ड उनकी लिखावट से ही पहचान जाता हूँ।
तो ये शिव शक्ति एक जगह है धुले महाराष्ट्र से, बिल्कुल
शिव शक्ति कॉलोनी, जी हाँ।
ये जिक्र कर रहे हैं, इंडिया बोल कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप जो है श्रोताओं को बोलने का अवसर ज्यादा दिया कीजिए, मौका थोड़ा कम मिलता है।
ये आप ही के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का जो आपने किया।
जी हाँ, रावत जी और कोशियारी इस कार्यक्रम में थे, शामिल थे।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी के नेता भगत सिंह कोश्यारी का जिक्र कर रहे हैं।
बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बीच में क्या वो परिचर्चा में श्रोताओं को समय नहीं मिल पाया।
अब समय तो हमारा भी समाप्त हो रहा है मोहनलाल जी, क्योंकि अब कार्यक्रम में चिट्ठियों के लिए इससे ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए चलते चलते अपने श्रोताओं को पता बता देते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लगातार लिखते रहेंगे। पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप कहें तो ईमेल का पता भी बता दें।
बिल्कुल बता दें,
hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
तो ये थे आपके पत्रों के उत्तर और देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है आदेश कुमार गुप्त के साथ।
एक तरफ इस बार आईपीएल में जहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स अभी तक 8 में से 6 मुकाबले हारकर सुपर फोर की दौड़ से बाहर होती नजर आ रही है, वहीं उसके लिए कोढ़ में खाद जैसी वाली बात यह है कि उसके बल्लेबाज स्टीव स्मिथ कलाई की चोट के कारण बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं। इससे पहले पुणे की टीम चोट के कारण केविन पीटरसन, फेफ डुप्लेसी और ऑलराउंडर मिचेल मार्च को भी गंवा चुकी है। पुणे के लिए खेल रहे स्टीव स्मिथ पिछले एक सप्ताह से हाथ की कलाई के दर्द से परेशान थे। स्मिथ ने अभी तक खेले गए 8 मैचों में 270 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ ने कल भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ 45 रनों की जोरदार पारी खेली, तो इससे पहले उन्होंने गुजरात लायंस के खिलाफ तो 101 रनों की शतकीय पारी खेली। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 46 और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 31 रन बनाए। ये तो उनकी लगातार खेली गई पारियां थी। जाहिर है कि स्मिथ की कमी धोनी को महंगी पड़ने वाली है। जबकि आज आईपीएल में केवल एक मुकाबला खेला जाएगा जहां बेंगलोर में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही बेंगलोर ने अभी तक 6 में से 4 मैच गंवाए हैं, जबकि उसके पास एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और शेन वॉटसन जैसे खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ गौतम गंभीर की कप्तानी में खेल रही कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक 7 में से 4 मैच जीते हैं और उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर है। वहीं चीन के शंघाई शहर में कल तीरंदाजी विश्व कप का पहला चरण समाप्त हुआ, जहां भारतीय महिला रिकर्व टीम चीन ताइपे से हार गई। दूसरी तरफ पुरुष टीम ने रिकर्व वर्ग में 9वीं वरीयता हासिल ब्रिटिश टीम को 6-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। इसके अलावा मिश्रित युगल में भारत की दीपिका कुमारी और अतुल दास की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने कोरियाई जोड़ी को बेहद रोमांचक मुकाबले में 5-4 से हराया। उधर टेनिस के कोर्ट पर मैड्रिड ओपन में आज स्पेन के फेलिसियानो लोपेज ने अर्जेंटीना के लियोनार्डो मायर को 7-6, 4-6, 6-4 से और यूक्रेन के अलेक्जेंडर डोल्गोपोलोव ने अमेरिका के स्टीव जॉनसन को 3-6, 6-3, 7-6 से मात दी।
और सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। इटली के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के एक ट्राइब्यूनल ने भारत में पकड़े गए एक नौसैनिक को मुकदमे की कार्रवाई पूरी होने तक इटली भेजने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत ने कहा है कि किसी इतालवी नौसैनिक को छोड़ने का आदेश नहीं दिया गया है और उनकी जमानत की शर्तें भारत की सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने में सरकारी अमला अब भी लगा हुआ है। जानबूझकर आग लगाने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनेवा में सीरिया के हालात पर चर्चा जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि सीरिया के युद्ध विराम को दोबारा लागू करने के लिए बातचीत सफल होती दिख रही है, लेकिन अब भी काम बाकी है। मिस्र में 2 पत्रकारों को विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को भड़काने के आरोप में पूछताछ की जा रही है। मिस्र पत्रकार यूनियन के मुख्यालय से कल इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में पुलिस ने एक सिख की पगड़ी उतारने के मामले में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के 6 लोगों के खिलाफ ईश निंदा का मामला दर्ज किया है। बीबीसी समाचार।
दिनभर को यहीं समाप्त करते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की दीपक जसरोटिया ने, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।